بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران پڑھنے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے کہ سورہ آل عمران پڑھیں ہم پیارے نبی کے اس ارشاد کو دہرا لیں کہ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو, کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہوں, اور یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اس محبت کے ساتھ اس سورت کو پڑھیے کہ قیامت کے دن کی دھوپ اور تپش میں یہ ہمارے اوپر بادلوں کا سایہ کریں گی, اور یہ ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے جو سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی, یہ ہماری دعا کی قبولیت بھی ہے. اور جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا اللہ نے یہودیوں کے جرائم بتائے, اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے عیسائیوں کے عقیدے کی اور عمل کی گمراہیوں کا ذکر کیا ہے. اللہ ان دونوں کے رویوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے دے. شروع کرتے ہیں. الف لام میم. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے, اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے, اور اس نے وہ کسوٹی اتاری جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں. جب اللہ ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو جانتا ہے, دیکھتا ہے اور اس کی صورت گری کرتا ہے, تو ہمارا کوئی معاملہ اللہ سے کیسے چھپ سکتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ شکلیں اللہ نے بنائی ہیں. نہ اپنی شکل پہ شکوہ کیجئے اور نہ کسی کی شکل اور رنگت پر اعتراض کیجئے, کہ اللہ جیسا چاہتا تھا اس نے بنایا اور بڑا ہی خوبصورت بنایا. وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں, ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں, اور دوسری متشابہات. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب کا تعارف دیا ہے, قرآن کا تعارف دیا ہے, کہ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں, ایک محکم. محکم کس کو کہتے ہیں؟ پختہ کو کہتے ہیں. اور یہ کتاب کی اصل بنیاد ہے. اس میں کیا ہے؟ عقیدہ بتایا گیا ہے, جہاں عبادات بتائی ہیں, جہاں معاملات بتائے ہیں, جہاں فرائض کا ذکر ہے, حلال و حرام کا ذکر ہے. یہ وہ محکم آیات ہیں. اور جو یہ جاننا چاہتا ہو کہ وہ کس راہ پر چلے اور کس راہ پر نہ چلے, اس کو انہی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اسی سے رہنمائی لینی چاہیے. اور جو دوسری آیات ہیں متشابہات, یہ وہ آیات ہیں جو ہمارے حواس سے بھی ماورا ہیں, جن جو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں, جن کو نہ ہم چھو سکتے ہیں, اور نہ ہی ہمارے علم میں یا ہمارے ادراک میں وہ چیزیں آ سکتی ہیں. مثلاً دوزخ, جنت, پچھلے قصے, اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, قیامت کے دن اعمال کا تلنا, جہنم کے اندر زقوم کا درخت کا ہونا, اللہ کے عرش کا تذکرہ, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو متشابہ آیات میں سے ہیں. اس پر ایمان لانا میرا اور آپ کا فرض ہے. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں, حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے. یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں, اور وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں. اب عقل مند لوگوں کی دعا سن لیجئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے پروردگار, جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو. ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ انسان سیدھے رستے پر آئے اور پھر شیطان اور پھر نفس کی ترغیبات سے بھٹک جائے. پروردگار, ہم تجھ سے दुआ करते हैं, सीधे रास्ते पर चलना भी तेरी ही तौफीक से है और सीधे रास्ते पर ही चलते चले जाना परवरदिगार तेरी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों के फेरने वाले तो हमारे दिल को अपने दीन पर जमा दे। और हदायत के बाद गुमराही में जाना ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई बहुत अमीर हो और उसके बाद वो कंगला हो जाए, इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। परवरदिगार तो यकीनन सब लोगों को एक रोज जमा करने वाला है, जिसके आने में कोई शुबा नहीं, तो हरगिज अपने वादे से टलने वाला नहीं है। जिन लोगों ने कुफर का रवैया इख्तियार किया है, इन्हें अल्लाह के मुकाबले में ना उनका माल कुछ काम देगा ना औलाद, वो दोजख का ईंधन बनकर रहेंगे। इनका अंजाम वैसा ही होगा जैसा फिरौन के साथियों और उनसे पहले के नाफरमानों का हो चुका, कि उन्होंने आयाते इलाही को झुठलाया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने इनके गुनाहों पर इन्हें पकड़ लिया। और हक ये है कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। बस ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने तुम्हारी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया है, उनसे कह दो कि करीब है वो वक्त जब तुम मगलूब हो जाओगे और जहन्नुम की तरफ हांके जाओगे, और जहन्नुम बड़ा ही बुरा ठिकाना है। तुम्हारे लिए उन दो ग्रोहों में एक निशाने इबरत था जो बदर में एक दूसरे से नबर्द आजमा हुए। एक ग्रोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा ग्रोह काफिर था। देखने वाले बचश्मे सर देख रहे थे कि काफिर ग्रोह मोमिन ग्रोह से दो चंद है, मगर नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी फतह नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। दीदाए बीना रखने वालों के लिए इसमें बड़ा सबक पोशीदा है। लोगों के लिए मरगूबातें नफ्स, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चीदा घोड़े, मवेशी और जरई जमीनें बड़ी खुशाइन बना दी गई हैं, मगर ये सब दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के सामान हैं। हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। इस आयत को थोड़ा सा देख लेते हैं। वो सारी चीजें जो मुझे और आपको पसंद हैं, अल्लाह ताला ने इस आयत में उनका जिक्र कर दिया। इन सारी चीजों का ख्याल करना भी दिल को अच्छा लगता है, दिल खिंचता है इन चीजों की तरफ। और अगर अल्लाह इन्हें मुजय्यन ना करता तो दुनिया का निजाम ना चलता। ये चीजें बुरी नहीं है, ना इनसे मोहब्बत बुरी है, और इन चीजों का अच्छा लगना काबिले मुआखिजा भी नहीं है। गलत तब है जब इंसान इन जरूरियात ही को मकसद जिंदगी बना ले। और हम देखते हैं कि अगर इन चीजों की मोहब्बत ना होती तो इंसान जन्नत की ख्वाहिश क्यों करता। अल्लाह ताला ने जन्नत में भी इन्हीं सारी चीजों को अट्रैक्शन बनाकर पेश किया है कि वहां खूबसूरती होगी, वहां अच्छे जेवरात होंगे, अच्छे लिबास होंगे, अच्छे घर होंगे, बाग होंगे, नहरें होंगी, पर वाले घोड़े होंगे, यानी इंसान उड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो अल्लाह ने जन्नत का तसव्वुर दिलाया है, अगर इन चीजों की मोहब्बत ना होती तो हम जन्नत की भी तलब ना करते। और इन सारी चीजों में हम देख रहे हैं कि टॉप ऑफ द लिस्ट औरत है। अगर औरत अच्छी है, नेक है, तो इससे बेहतरीन चीज दुनिया में और कोई हो नहीं सकती। प्यारे नबी फरमाते हैं, दुनिया मता है और बेहतरीन मता साले औरत है। और अगर ये औरत बुरी है तो इससे बढ़कर नुकसानदेह चीज भी दुनिया की और कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की यह हदीस है कि मेरे बाद मर्दों के लिए कोई फितना औरतों से बढ़कर नुकसानदेह नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद का जिक्र किया। सौले औलाद तो बेहतरीन सदका जारिया है, और इसी तरह सोने चांदी के ढेर, या उस वक्त तो जाहिर है सोना चांदी ही माल होता था, और आज आप कह लें कि नोटों की गड़ियां और गड़ियों की गड़ियां, ये ढेर जो है, प्यारे नबी फरमाते हैं, अच्छा माल अच्छे इंसान के लिए क्या ही अच्छी चीज है। देखे, माल होगा तो ज़कात अदा करेंगे, माल होगा तो खैरात करेंगे, माल होगा तो अपनी और जरूरतमंदों की जरूरियात पूरी कर सकेंगे, सदका जारिया के कामों में लगा सकेंगे। हजरत सुलेमान बहुत प्यारी बात करते हैं और अल्लाह उनकी इस बात को नकल करते हैं कुरान में कि अन्नी अहबब तू हुब्बल खैरी अन जिक्र रब्बी, कि मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, तो सोचिए अल्लाह की याद की वजह से मुझे इनसे मोहब्बत है। यानी मैं इन चीजों को अल्लाह की याद में लगाऊं, अल्लाह की फरमा बरदारी में लगाऊं, दीन के रस्ते में इस्तेमाल करूं, अपनी जात की जरूरियात और अपने अहले खाना की जरूरियात और लोगों की जरूरियात को पूरा करूं। हाँ, इन चीजों को रब की नाफरमानी में इस्तेमाल करना बुरा है। फखर ना हो, गुरूर ना हो, दिखावा ना हो। जिस तरह अच्छे ड्राइवर को पता है कहाँ ब्रेक लगानी है और कहाँ रेस देनी है, तो ये अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ दे दे। और दीन के रास्ते में अच्छा माल इस्तेमाल करना, अच्छी चीजों का इस्तेमाल करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। काफिर तो दुनिया की बेहतरीन चीजें इस्तेमाल करें और अपने वक्त और सलाहियतों को बचाएं, और मोमिन अगर किसी अच्छी चीज को इस्तेमाल करे दीन का काम करते हुए और लोग मुंह में उंगली दुबा लें कि ये देखो मौलवी और इसके रहन सहन को देखो, तो ये बात गलत है। अल्लाह के रस्ते में अल्लाह की रजा के लिए अच्छे माल को हलाल तरीके से कमाना और जायज कामों में खर्च करना, सदका जारिया के कामों में खर्च करना और इन चीजों की तमन्ना रखना, ये कोई बुरा नहीं है। हमारे असलाफ दुआ किया करते थे, ए अल्लाह हम ये इस्तेआत नहीं रखते कि हम इन चीजों पर खुश ना हों जिसमें तूने हमारे लिए कशिश रख दी है। ए अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं कि इन चीजों को जहाँ खर्च करने का हक है खर्च करें और हमें इनके शर से बचा। तो यही दुआ कीजिए अल्लाह से, अल्लाह हमें इसकी सही समझ दे दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहो मैं तुम्हें बताऊं कि इनसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है। जो लोग तकवा की रविश इख्तियार करें उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहां इन्हें हमेशगी की जिंदगी हासिल होगी, पाकीजा बीवियां उनकी रफीक होंगी और अल्लाह की रजा से वो सरफराज होंगे। अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नजर रखता है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं, मालिक हम ईमान लाए, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा और हमें आतशे दोजख से बचा ले। ये लोग सबर करने वाले हैं, यानी ये लोग दीन पर डट जाने वाले हैं। किसी मुसीबत से ये हिम्मत नहीं हारते, किसी नाकामी से दिल शिकस्ता नहीं होते, किसी लालच से ये फिसल नहीं जाते और हर हाल में नेकी के रास्ते पे कायम रहते हैं। रास्तबाज हैं, फरमा बरदार हैं, फयाज हैं और रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से मगफिरत की दुआएं मांगा करते हैं। इतनी नेकियां करने के बाद भी ना कोई गरूर है, ना कोई तकब्बुर है, आजी है और अल्लाह से माफी की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने खुद शहादत दी है कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं, और यही शहादत फरिश्तों और सब अहले इल्म ने भी दी है। वो इंसाफ पे कायम है, उस जबरदस्त हकीम के सिवा फिल वाके कोई खुदा नहीं। अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, सिर्फ एक ही तरीका जिंदगी है जो अल्लाह के यहाँ महबूब है, जिस पर सरकारी मोहर है, जो एक्सेप्टेड है। इसके अलावा हर चीज अल्लाह के दरबार में रिजेक्ट कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ तरीके उन लोगों ने अख्तियार किए जिन्हें किताब दी गई थी, उनके इस तर्ज अमल की कोई वजह इसके सिवा न थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए ऐसा किया। और जो कोई अल्लाह के अहकाम व हदायात की इताअत से इनकार कर दे, अल्लाह को इससे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। अब अगर ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो इनसे कहो, मैंने और मेरे पैरवों ने तो अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया है। फिर अहले किताब और गैर अहले किताब दोनों से पूछो, क्या तुमने भी इसकी इताअत और बंदगी कबूल की? अगर की तो वो राह रास्त पा गए, और अगर इससे मुंह मोड़ा तो तुम पर साफ पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी। आगे अल्लाह खुद अपने बंदों के मामला देखने वाला है। जो लोग अल्लाह के अहकाम व हदायात को मानने से इनकार करते हैं और इसके पैगम्बरों को नाहक कत्ल करते हैं और ऐसे लोगों की जान के दरपे हो जाते हैं जो खल्के खुदा में अदल और रास्ती का हुक्म देने के लिए उठे, इनको दर्दनाक सजा की खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखरत दोनों में जाया हो गए और इनका मददगार कोई नहीं। इन आयतों में हम देख रहे हैं वो लोग जो ना खुद दीन का काम करते हैं और ना दीन का काम करने वालों का साथ ही देते हैं, बल्कि उल्टा उनकी जान के लागू हो जाते हैं, उन्हें सताते हैं। बनी इसराइल का भी यही रवैया था, उन्होंने पैगम्बरों को कत्ल किया, उन्होंने सुलहा को कत्ल किया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोगों को दर्दनाक सजा की खुशखबरी दे दो। हमारे असलाफ में ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं। इमाम इब्ने तैमिया को अंधे कुएं की सजा दी गई, इमाम अहमद बिन हम्बल को इतने कोड़े मारे गए कि अगर हाथी को भी वो कोड़े मारे जाते तो ताब ना ला सकता, और इमाम अबू हनीफा को जिंदा में डाल दिया गया, कैद में डाल दिया गया, और रोजाना उन्हें कोड़े मारे जाते, और इसी हालत में एक दिन सजदे की हालत में वो फौत हो गए। तो अल्लाह का नाम लेने वालों को लोगों ने सताया, लेकिन अल्लाह ने उनके बारे में कह दिया कि इनकी कोई नेकी, इनका कोई अमल इन्हें आखरत में काम नहीं आएगा, और इनके लिए दर्दनाक सजा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा मिला है उनका हाल क्या है? उन्हें जब किताब इलाही की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो इनके दरमियान फैसला करे, तो इनमें से एक फरीक इससे पहलू तही करता है और इस फैसले की तरफ आने से मुंह फेर जाता है। इनका ये तर्ज अमल इस वजह से है कि वो कहते हैं आतिश दोजक तो हमें मस्तक न करेगी, और अगर दोजक की सजा हमको मिलेगी तो भी चंद रोज। उनके खुद साख्ता अकीदों ने उनके अपने दीन के मामले में बड़ी गलत फहमियों में डाल रखा है, मगर क्या बनेंगी उन पर जब हम उन्हें उस रोज जमा करेंगे जिसका आना यकीनी है। उस रोज हर शख्स को उसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दे दिया जाएगा और किसी पर जुल्म ना होगा। यहाँ उनके उस गलत अकीदे का जिक्र है कि हमें तो दोजख की आग छुएगी नहीं, हम तो अल्लाह के चहीते हैं, हम तो अल्लाह के लाडले हैं, और हमारे लिए दोजख नहीं है। ये सोच आप देखें कि अकीदा जब बिगड़ता है तो अमल बिगड़ता है, और उनके इसी तखयुल ने उन्हें बड़े बड़े गुनाहों पर दलेर बना दिया। अगर कानून तोड़ने वालों को पकड़ा ना जाए तो कानून पर अमल कौन करेगा? और हम देखते हैं कोई इंसान धोखा नहीं खाना चाहता, लेकिन इस अकीदे में लोग धोखे में मुब्तला हो गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश और अल्लाह का फजल ये यकीनन एक मोमिन के लिए बड़ा सहारा है, मगर किसके लिए? उन लोगों के लिए जो ईमान और अमल के लिए कोशिशें करते रहे लेकिन कोताहियां होती रहीं, मगर जानबूझकर सरकशी या नाफरमानी की राह इख्तियार न की, तो हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहो खुदाया मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसे चाहे जलील करे। रुक कर दुआ कीजिए, परवरदिगार हमें जब तक इस जमीन पर रखना इज्जत के साथ रखना, और जब इस जमीन के अंदर लेकर जाना इज्जत के साथ लेकर जाना। भलाई तेरे इख्तियार में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। रात को दिन में फिर होता हुआ ले आता है, और दिन को रात में, जानदार में से बेजान को निकालता है और बेजान में से जानदार को, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। रात को दिन में पिरोना और दिन को रात में, मुश्किल के साथ ही आसानी है, गम के बाद खुशी, खुशी के बाद गम। वो रब है, वो अपनी कुदरतें दिखाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक और दोस्त हरगिज ना बनाए। महबूब का दुश्मन महबूब नहीं हो सकता, दोस्त का दुश्मन दोस्त नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ ये माफ है कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए बजाहिर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार कर जाओ, मगर अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसी की तरफ पलट कर जाना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को खबरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे ख्वा तुम छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह बहरहाल उसे जानता है। जमीन और आसमान की कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं है, और उसका इक्तदार हर चीज पर हावी है। वो दिन आने वाला है जब हर नफ्स अपने किए का फल पाएगा। यहाँ तो छुपा लेंगे, वहां कैसे छुपाएंगे? अल्लाह ताला हमें उस रोज नेकियां समेटने वाला बना दे। आज नेकियां करेंगे तो उस रोज पाएंगे। उस रोज आदमी ये तमन्ना करेगा, काश अभी ये दिन उससे बहुत दूर होता। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, और वो अपने बंदों का नहायत खैर ख्वाह है। हमें इल्म नहीं बचाएगा, अल्लाह का डर बचाएगा। अल्लाह हमें अपना डर अता फरमा। हम लोगों की बातों से डरते हैं, कानून से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, लोगों की नाराजगी से डरते हैं। यहाँ अल्लाह कह रहा है मुझसे डरो, मेरा डर तुम्हें यहाँ दुनिया में भी सिराते मुस्तकीम पर रखेगा और आखरत में भी जजा जो है वो इसी जरिए से मिल सकती है। अल्लाह हमें अपना तकवा अता फरमा दे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खताओं से दरगुजर फरमाएगा। हम भी अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत तो दलील मांगती है, सबूत मांगती है। मोहब्बत तो ऐसी चीज है जो हर दूसरी चीज से बेगाना कर देती है, और मोहब्बत एक ऐसा छुपा हुआ जज्बा है कि जो है, नहीं है, कम है या ज्यादा है, कैसे पता चलेगा? ये तो इलामतों से पता चलेगा, इसकी कुछ निशानियां होंगी। अल्लाह से मोहब्बत है या नहीं, कितनी है, ये कैसे पता चलेगा? कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चला, जितना जितना आपके तरीके पर चला उतनी उसको रब से मोहब्बत है। आग हो और उसकी हरारत ना हो, बर्फ हो और उसकी ठंडक ना हो, अल्लाह से मोहब्बत हो और नबी की इताअत ना हो, ये हो नहीं सकता। नबी की इताअत होगी तो रब का प्यार मिलेगा। अरबी शेर का एक तर्जुमा है कि अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो तू अपने महबूब की इताअत में सरगर्म होता। अल्लाह हमें अपनी सच्ची मोहब्बत दे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी करने वाला बना दे। हजरत अनस कहते हैं कि हुरमते शराब की इत्तला मिलने के बाद ना तो किसी ने इसके बारे में सवाल किया ना तकरार की। ये है नबी की इताअत कि जिस चीज के बारे में आपका हुक्म पता चल जाए फिर ना सवाल करें और ना तकरार करें। अल्लाह हमें आपकी इताअत करने वाला बना दे और अल्लाह इसके जरिए से हमारी खताओं से दरगुजर फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तुम्हारी खताओं से दरगुजर करेगा, वो बड़ा माफ करने वाला और रहीम है। उनसे कहो कि अल्लाह और रसूल की इताअत कबूल कर लो, फिर अगर वो तुम्हारी ये दावत कबूल ना करे तो यकीनन ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करे जो उसकी और उसके रसूल की इताअत से इनकार करते हों। अल्लाह ने आदम और नूह अलैहिस्सलाम और आले इब्राहिम और आले इमरान को तमाम दुनिया वालों पर तरजीह देकर अपनी रसालत के लिए मुंतखब किया। ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। वो उस वक्त सुन रहा था जब इमरान की औरत कह रही थी कि मेरे परवरदिगार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नजर करती हूँ, वो तेरे ही काम के लिए वक्फ होगा, मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा, तू सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ से हम देख रहे हैं हजरत मरियम का तस्करा शुरू होता है। हजरत मरियम जो कि पैगंबर नहीं थी लेकिन पैगंबर की माँ थी और इतनी बाहया और पाकिरदार और पाकीज़ा और सालेह फितरत बच्ची हैं, और उनकी माँ का तस्करा अल्लाह ताला कह रहे हैं। सालेहियत औलाद की कब शुरू होती है? माओ से शुरू होती है। हजरत मरियम की वालिदा देवा थी और हामिला थी। हम देखते हैं कि वालदैन को अपनी औलाद से कितनी उम्मीदें होती हैं। औलाद हो फिर वो बड़ी हो, हमारे काम आए, हमारी खिदमत करे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हम में से कितने हैं जो अपनी औलाद के लिए ये तमन्ना करते हैं कि वो तेरे काम के लिए वक्फ हो, तेरे दीन की खिदमत करे। अल्लाह हमें ऐसा जज्बा दे दे। इरादे तो बांधे, नियतें तो करें। इमाम बुखारी की वालिदा ने उनकी पैदाइश से पहले नजर मानी थी, अल्लाह इस औलाद को मैं हदीस नबवी के लिए वक्फ कर दूंगी। और फिर पैदा हुए इमाम बुखारी तो नाबीना थे, तड़प कर अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। और जो इखलास से दुआ मांगी तो देखें अल्लाह ने वाकई उनसे वो काम ले लिया जो वालिदा की तमन्ना थी, जो उनकी चाहत और दुआएं थी। और इसी तरह हजरत मरियम की वालिदा है, कितनी मोहब्बत है और कितने इखलास से अपने बुढ़ापे की फिक्र नहीं है कि अल्लाह बेटा दे जो मेरा बुढ़ापे का सहारा हो, फिक्र है तो तेरे दीन की फिक्र है कि तेरे दीन का काम करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर जब वो बच्ची उसके यहाँ पैदा हुई तो उसने कहा, मालिक मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो परेशान हो गई हो कि हाय अब बच्ची हो गई, इसके जहेज का क्या बनेगा, इसकी किस्मत की फिक्र लग गई हो। नहीं, फिक्र थी तो इस बात की कि जो दीन की खिदमत की नीयत की है, जो नेकी की नीयत की है, उसका क्या बनेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं हालांकि जो कुछ उसने जना था अल्लाह को इसकी खबर थी और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। वलैसा ज़करु कल उनसा, लड़का लड़की जैसे काम कर ही नहीं सकता। जो काम अल्लाह ने एक औरत से लेना था वो मर्द कर ही नहीं सकता। और ये भी कि ये लड़की लड़के से बदरजहां बेहतर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खैर मैंने उसका नाम मरियम रख दिया और मैं इसे और इसकी आइंदा नस्ल को शैताने मर्दूद के फितने से तेरी पनाह में देती हूँ। आप यहाँ पर फिर सोचिए कैसी प्यारी दुआ है हजरत मरियम की वालिदा अपनी औलाद के लिए, और न सिर्फ अपनी औलाद के लिए उनकी नस्लों के लिए दुआ मांग रही हैं। और कितनी खूबसूरत दुआ है, वह इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिन शैतानिर रजीम। हमें माँ के पेट से वैक्सीन की फिक्र होती है, इस दुआ की फिक्र कीजिए। बच्चे के पैदा होते ही इंजेक्शन की फिक्र लग जाती है, लेकिन हमें शैतान से बचाने की फिक्र लग जानी चाहिए। विलादत के वक्त इस दुआ को मांगा जाना चाहिए। ये दुआ विलादत के वक्त मांगने से, प्यारे नबी फरमाते हैं कि जो बच्चा भी पैदा होता है शैतान उसे छूता है, जिससे वो चीखता है। लेकिन अल्लाह ने इस मत से शैतान से हजरत मरियम और इनके बेटे को महफूज रखा। तो ये दुआ विलादत के वक्त की दुआ है, याद भी कर लीजिए अपने लिए, अपनी बहुओं के लिए, बेटियों के लिए। जब ऐसा वक्त आए तो उस वक्त ये दुआ कीजिए और ये तमन्ना कीजिए, अल्लाह ताला इस औलाद को शैतान के शर से बचा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसन। अल्लाह ने उस लड़की को बखुशी कबूल फरमा लिया और उसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया। अच्छी नीयत थी, इखलास के साथ तड़प कर रब से दुआ मांगी थी, तो रब ने उस दुआ को कबूल कर लिया, बेहतरीन उसकी तरबियत की। अल्लाह ताला कहते हैं, और जकरिया को इसका सरपरस्त बना दिया। जकरिया जब कभी उसके पास मेहराब में जाता तो उसके पास कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान पाता। पूछता, मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया है? वो जवाब देती कि अल्लाह के पास से आया है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। अच्छा, यहाँ रिस्क का तذکرہ है, वजद इंदहा रिस्का, कि हजरत जकरिया उसके पास रिस्क पाते। हम समझते हैं कि रिस्क सिर्फ खाने पीने की चीजों का नाम है। रिस्क सिर्फ खाने पीने की चीजों का नाम नहीं है, बल्कि दीन की समझ, सालिहियत का मिल जाना, ये भी अल्लाह का रिस्क है। और हजरत जकरिया यकीनन सिर्फ उनके खाने पीने की चीजों से मुतासर नहीं होते होंगे, बेमौसमी फलों से मुतासर नहीं होते होंगे, हजरत मरियम की सालिहियत से मुतासिर होते होंगे। और हजरत ईसा का इरशाद है कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि उस कलमे से जीता है जो अल्लाह की तरफ से आता है। मोमिन का मंतहा नजर सिर्फ खाना पीना और रोटी नहीं होता, बल्कि वो कानून होता है, वो दीन और शरीयत जो रब की तरफ से आती है, वो अल्लाह का रिस्क है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि पैगंबर भी सालेह फितरत लड़की पर रश्क करते हैं। ये हाल देखकर जकरिया ने अपने रब को पुकारा, परवरदिगार अपनी कुदरत से मुझे नेक औलाद अता कर, तू ही दुआ सुनने वाला है। हजरत जकरिया यहाँ अपने लिए दुआ मांगते हैं, बुढ़ापे में औलाद की दुआ मांगते हैं, सौले औलाद की दुआ मांगते हैं। तो इससे पता चलता है कि नेक औलाद की दुआ करना अंबिया की सुन्नत है। और दूसरा, हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि हजरत जकरिया ने जब देखा कि हजरत मरियम इतनी पाकीज़ा हैं, इतनी इबादत गुजार हैं, और इनके पास जो है वो अल्लाह ताला बेमौसमी फल भी दे रहे हैं, और ये भी इन आयतों से पता चलता है, किसी की कोई भी नेमत देखें तो हसद करने की बजाय अल्लाह से मांगे। जवाब में फरिश्तों ने आवाज दी जबकि वो मेहराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था कि अल्लाह तुझे यहया की खुशखबरी देता है। अल्लाह अकबर, ये असबाब तो बंदों के लिए हैं, अल्लाह तो मुसब्बुल असबाब है। बुढ़ापे में औलाद दे सकता है, बीवी के बांझपन के बावजूद औलाद दे सकता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से एक फरमान की तस्दीक करने वाला बनकर आएगा, इसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी, कमाल दर्जे का जब्त नफ्स होगा, नबूवत से सरफराज होगा और सालिहीन में से शुमार किया जाएगा। जकरिया ने कहा, परवरदिगार भला मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी बांझ है। जवाब मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। अर्ज किया, मालिक फिर कोई निशानी मेरे लिए मुकर्रर फरमा दे। कहा, निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बातचीत ना कर सकोगे। तो यहाँ हजरत जकरिया का ये भी हम देख रहे हैं कि वो नमाज में अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। हमारे असलाफ दुआएं और फरियादें नमाज में किया करते थे और जब लौटते थे तो दामन भर कर लौटते थे। हम नमाज मारी बांधी पढ़ते हैं और नमाज के बाद भी बाज़ों का दुआ की तौफीक नहीं होती और फौरन मुसल्ला लपेट कर खड़े हो जाते हैं। रब से मांगने का बेहतरीन वक्त नमाज है। सजदे में पढ़कर रब से मांगे, और अगर कोई वक्त ऐसा हो तहज्जुद का वक्त हो तो और भी बेहतरीन वक्त है। और यहाँ अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि इस दौरान में अपने रब को बहुत ज्यादा याद करना और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहना। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह की तरफ से खुशखबरी मिले तो अल्लाह की याद को अपना लें, और कम बोलना अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने में मदद देता है। फिर वह वक्त आया जब मरियम से फरिश्तों ने आकर कहा, ऐ मरियम, अल्लाह ने तुझे बरगुजीदा किया और पाकीजगी अता की। आप यहाँ देखें, पाकीजा माहौल पाकीजा तरबियत में कितना मुआविन होता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, तमाम दुनिया की औरतों पर तुझको तरजीह देकर अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। औरतें भी दीन की खिदमत का काम कर सकती हैं, और बहरहाल सबसे बड़ी खिदमत जो औरत दीन की कर सकती है वो औलाद की सही तरबियत, सौले औलाद इस माशरे को दे जाए तो इससे बड़ी खिदमत और क्या होगी। ऐ मरियम, अपने रब की ताबे फरमान बन कर रह, इसके आगे सर बसजूद हो, और जो बंदे इसके हजूर झुकने वाले हैं उनके साथ तू भी झुक जा। अब यहाँ ईसाइयों का अकीदा भी दुरुस्त किया जा रहा है कि वो खातून जो खुद रब के आगे सजदे करने वाली हो वो खुदा कैसे हो सकती है। और हजरत मरियम तो अभी पैदा भी नहीं हुई थी कि उनकी माँ ने अल्लाह की इबादत के लिए उन्हें वक्फ करने की नियत कर ली थी। तो जो पैदाइश से पहले से इबादत के लिए वक्फ है तो वो रब कैसे हो सकती है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम तुमको वही के जरिए से बता रहे हैं, वरना तुम उस वक्त वहाँ मौजूद न थे जब हैकल के खादम ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन हो अपने अपने कलम फेंक रहे थे, और न तुम उस वक्त हाजिर थे जब उनके दरमियान झगड़ा बरपा था। आप देखें, वालदैन की नेकियां औलाद के काम आती हैं। एक बच्ची जो यतीम है जिसका कोई कफील नहीं है, इतने कफील है कि कुरानदाजी करनी पड़ रही है, तो बस अल्लाह के दीन की खिदमत की नीयत कर ले, इंशाल्लाह ताला अल्लाह राहें खोलता है और अल्लाह औलादों के लिए भी राहें आसान कर देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक फरमान की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। हजरत ईसा का नाम मसीह क्यों है? दो इसके मतलब बताए जाते हैं। एक तो वो जब छूते थे किसी बीमार को अल्लाह के हुक्म से वो दुरुस्त हो जाता था, मुर्दे को छूते थे वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता था, और ये भी कि जब उनको नबुवत मिली तो उसके बाद उन्होंने सारा अपनी उम्र जो थी वो सियाहत में गुजारी, दीन की तबलीग और इशाअत में घूमते फिरते गुजारी। तो इन दो हवालों से आपको मसीह कहा जाता है। दुनिया और आखरत में मुअज्जज होगा, अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार किया जाएगा। यहाँ देखें, फिर अल्लाह ताला तस्दीक कर रहे हैं अकीदे की कि हजरत ईसा अल्लाह के बंदे हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों से गहवारे में भी कलाम करेगा और बड़ी उम्र को पहुंच कर भी। थोड़ा सा रुक के ये सोचिए कि गहवारे में कलाम करना तो एक मौजजा है, लेकिन बड़ी उम्र को पहुंच कर कलाम करना ये कौन सा मौजजा है? तो इसमें इशारा है कि 33 बरस की उम्र में उठाए जाने के बाद वो दोबारा उनका जहूर होगा और वो लोगों से कलाम करेंगे और वो एक मर्दे सौले होगा। ये सुनकर मरियम बोली, परवरदिगार, मेरे यहाँ बच्चा कहाँ से होगा, मुझे तो किसी शख्स ने हाथ तक नहीं लगाया। जवाब मिला, ऐसा ही होगा, यानी बावजूद इसके कि किसी मर्द ने तुझे हाथ नहीं लगाया तेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा। देखिये, अल्लाह कभी मांगे से देता है और कभी बिन मांगे से देख देता है। अल्लाह बड़ी शान वाला है। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। वो जब किसी काम के करने का फैसला फरमाता है तो बस कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है। फरिश्तों ने फिर अपने सिलसिला कलाम में कहा, और अल्लाह उसे किताब और हिकमत की तालीम देगा, तौरात और इंजील का इल्म सिखाएगा, और बनी इसराइल की तरफ अपना रसूल मुकरर करेगा। और जब वो बहसियत रसूल बनी इसराइल के पास आया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत का एक मुजस्समा बनाता हूँ और इसमें फूंक मारता हूँ, वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजाद अंधे और कोड़ी को अच्छा करता हूँ और मुर्दे को जिंदा करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में जखीरा करके रखते हो? इसमें तुम्हारे लिए काफी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो, और मैं उस तालीम और हदायत की तस्दीक करने वाला बनकर आया हूँ जो तौरात में से इस वक्त मेरे जमाने में मौजूद है। थोड़ा सा ठहर कर हम ये जिक्र कर लें कि अल्लाह ने हर नबी को उनके जमाने के हाल के मुताबिक मौजे अता किए। हजरत मूसा के दौर में जादू का बहुत जोर था, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को असा और यद बैजा जैसा मौजा अता किया जिसके आगे जादूगर जो है वो शशदर रह गए। हजरत ईसा के दौर में तिब का, मेडिकल का और साइंस का बड़ा जोर था, और जब हजरत ईसा के मौजे अल्लाह ने जो उनको अता किए वो भी तिब और साइंस से मुतालिक थे, और उनके आगे बड़े बड़े हकीम और साइंसदान हैरत ज़दा रह गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फसाहत और बलागत और शायरी इसका बड़ा जोर था, और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजा दिया गया वो कुरान, जिसके पाए का कोई फसीह व बलीग कलाम दुनिया में ना ला सका, अल्लाह ने आपको ऐसा मौजा अता किया। और हजरत ईसा की तो सारी ही जिंदगी मौजजे ही मौजजे, पैदाइश से लेकर गहवारे में कलाम करना और फिर ये सारे मौजजे जो इस आयत में जिक्र हैं, और फिर जिंदा उठाया जाना, ये सारी ही जिंदगी मौजजों से इबारत है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए बाज उन चीजों को हलाल कर दूं जो तुम पर हराम कर दी गई हैं। देखो मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, यानी हजरत ईसा खुद खुदा नहीं है माज अल्लाह, हजरत ईसा का रब भी अल्लाह है, लिहाजा तुम उसी की बंदगी अख्तियार करो, यही सीधा रास्ता है। जब हजरत ईसा ने महसूस किया कि बनी इसराइल कुफर और इनकार पर आमादा हैं, तो उसने कहा, कौन है अल्लाह की राह में मेरा मददगार? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए, गवाह रहो कि हम मुस्लिम यानी अल्लाह के आगे सरे इताअत झुका देने वाले हैं। मालिक, जो फरमान तूने नाजिल किया है हमने उसे मान लिया, और रसूल की पैरवी कबूल कर ली, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। आप देखें यहाँ पर कि पैगंबर भी दीन के गलबे के लिए लोगों से मदद मांग रहे हैं। अल्लाह के दीन का पैगाम हर दिल तक पहुंचाना और दिलों में उतार देना, जिंदगियों को बदलना और एक तहरीक का बरपा कर देना, और फिर इनकलाब के जरिए से लादीनियत का खात्मा करना और अल्लाह के दीन को गालिब करना, ये ऐसा काम है जो कोई फर्द तनहा नहीं कर सकता। अल्लाह चाहता वो रब जो बिन बाप के बच्चा पैदा कर सकता है, वो अपनी कुदरत से पूरे दीन को पूरी दुनिया पर गालिब कर सकता है, लेकिन ये एजाज है जो वो अपने चुने हुए बंदों को अता करता है। और हम अपनी तसी कर लें, हमारे दीन को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह के दीन की जरूरत है। नियतें कर लीजिए, अपने लिए भी इरादे बांध लीजिए, अपनी औलादों के लिए, अपनी नस्लों के लिए दुआएं कर लीजिए कि परवरदिगार तू हमारा नाम भी गवाही देने वालों में लिख ले, परवरदिगार तू हमसे अपनी दीन की खिदमत का काम ले ले, हमारी औलादों से अपनी दीन की खिदमत का काम ले ले। कितना बड़ा टाइटल है जो अल्लाह ताला दे रहे हैं, अल्लाह अंसारुल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो मेरे नबी के मददगार हैं, कहा वो मेरे मददगार हैं। कितना बड़ा एजाज है जो किसी को मिल जाए, परवरदिगार तू ये एजाज हमें अता कर दे।